सतनाम निर्भव निर्वैर काल मूर्त आजुनी सैभं गुरु प्रसाद मुखुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बथुरो सुने जो काल कृपा कराए जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराई तेहा हाँ करी वखिया। सन्मानियो गुरु सत्संग जियो दीनता सहित गुरुदेव दी फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। हरी जस कीर्तन राही आप सरवण कर रहे थे गुरु घर दे विच ईश्वर प्राप्ति का यह मुख साधन है सिरमौर साधन है। जिस तरह इस्लामी जगत विच नमाज की महानता है ते पहल है ईसाई जगत विच प्रेरणू ही प्रधानता दिती गई है। हिंदू जगत विच हवन है यज्ञ है पूजा है तीर्थां दा रटन है इत्यादि कर्म कांड नूं अग्गे कीता गया है। सिख जगत विच केवल कीर्तन है अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा एक वसीला कीर्ति कर करके करते नाल जुड़ना। कलयुग में कीर्तन प्रधान तो करते पुरख की कीर्ति आप कीर्तन राही सरवण कर रहे से इस वक्त जो विचार बने ने वो मैं थोड़े समक्ष भेट करने की कोशिश करा। समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक गमन करिए ईश्वर तक लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते ने जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ ते सियाने कह रहे ने कि ये जिहड़ी सदी है ये जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है इसमें चंगे साइंसदान पैदा किए ने चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने चंगे भगत नहीं पैदा किए चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए संत पैदा होए अवतार पैदा होए आलम पैदा होए पर यह जिहड़ी सदी है इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने चंगे डॉक्टर पैदा किए ने चंगे साइंसदान पैदा किए ने चंगे राजनीतिक पैदा किए ने और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने चंगे ब्रह्मज्ञानी नहीं पैदा किए चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है मनुख डॉक्टर बनना चाहता है मनुख व्यापारी बनना चाहता है मनुख राजनीतिक बनना चाहता है मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कभी मुताला करो तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक देश दो हत्थां दियां उंगलियां कई उन्हां बंदियां नूं गिण सकदे आं जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए नहीं पहुंचे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने दो बाणियां इस ढंग दियां उच्चारण कीतियां ने। शाम दे वक्त तुसी जो पढ़ते हो रहराज साहब, दो शब्दों के उत्ते सिरलेख ने, सो दर सो पुरख। एक है सो पुरख, एक है सो दर। ओ दर जिसनों असी परमात्मा का दर कहते हैं, अकाल पुरख का दर कहते हैं, वह दर लकड़ का नहीं बनया हुआ, लोहे का नहीं बनया हुआ, सोने का नहीं बनया हुआ, चांदी का नहीं बनया हुआ। उस दर की बड़ी अगन्नी व्याख्या है, सो दर सो पुरख। सो पुरख तक पहुँचने वास्ते पहले सो दर तक पहुँचना पड़ेगा। एकाग्रता बख्शनी ताकि जो कुछ मैं कहना चाहना वो कह सकां ते तुसी सुन सको। सो दर सो पुरख। सो दर शब्द गालबन तीन दफा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आया है, जपजी साहब के अंदर, रहराज साहब के अंदर, आसा राग दे। सो दर में बार बार क्यों दोहराया गया? क्योंकि गुरु नानक की चेष्टा है, गुरु नानक की कोशिश है कि मनुख नू सो दर तक पहुँचाया जाए। फिर मैं लफ्ज दोहरा दें, गुरुद्वारे आमना होर गल है, गुरु तक पहुँचना होर गल है। गुरुद्वारे सारे ही आ जाते हैं, गुरु तक कोई कोई पहुँचता है, कदी कदा वो भी कदी। गुरु नू मनना होर गल है, गुरु दी मनना होर गल है। गुरु नू तो सारे ही मनते हैं, पर गुरु दी कौन मनता है? एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो गुरु तक पहुंचना होर गल है, गुरुद्वारे आवना होर गल है। सो दर उस दर तक पहुंचना है। गुरु अमरदास जी महाराज ने इस गल नू बड़े सोहने ढंग नाल खोले है। आप कहिंदे ने, संसार विच असी जा सकीए सानू परिपूर्ण परमात्मा ने नौ दरवाजे दिते हैं, पर असी करतार तक पहुंच सकीए, परमात्मा तक पहुंच सकीए, एको ही दरवाजा है, कि वह दरवाजा भी बंद है, बिल्कुल बंद पे। रामकली राग के एक शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज ने भी सही सवाल नूं फिर खड़ा किया है। आप कहिंदे ने, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन रहे। हे अकाल पुरख, जिथे तू वसदा है वो दर केड़ा है, किथे है, उस दर तक कौन पहुंचे है? मस्जिद नो मुसलमान कहते हैं ये खाना है खुदा है, ते मस्जिद विचो कोई होके आवे तो कहता है खुदा दे घर विचो मैं होके आया। मंदिर विचो कोई होके आए तो कहता है मैं भगवान दे घरों होके आया। गुरुद्वारे विचों कोई होके आवे तो कह देता है बंदा मैं गुरु के दर तो होके आया। पर मैं इतनी अर्ज करते हैं, मंदिर जाना होर गल है, भगवान तक पहुंचना होर गल है। मस्जिद में चले जाना बड़ा आसान है, खुदा तक पहुंचना बड़ी औखी गल है। गुरुद्वारे आ गए की औखियाई है? कोई औखियाई नहीं, पर गुरु तक पहुंचना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल, बड़ी कठिन गल। कदी कदाई कोई गुरु तक पहुंच रहा है। तो साहब इतने सवाल खड़ा कर रहे ने, जित दर वसे कवन दर कहिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वह दर किथे, वह दर केड़ा है? गुरु नानक का यह सवालिया नुकता प्रश्न, इनू प्रश्नमई बचन कहते ने। जिन्हों बचना जिन्हों शब्दों में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नू लभदा लभदा मैं उदासी बन गया, उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया। और मैं इतनी अर्ज कर दी है, यही संसार सब कुछ है तो संसार तो उच्चा उठन की सुरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहने जिस घर नू लगदा लगदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे, ओ घर मैनू कोई दसे। जिसनू लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहा, खोज कर रहा। तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टा ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है, ऐसी गल नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारिया थावां ते नहीं हो सकता। तुसी इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं, जे घर विच होवोगे ते इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारिया थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है, आकार तो रहित है। फिर उसका घर कित्थे है जिहड़ा सर्वव्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहित है, जिहड़ा रंग रूप तो रहित है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहित है, उसका घर कित्थे है, किवें उस तक पहुंचिए। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया है। आप कहिंदे ने कि नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा पर जिहड़े कुछ अभ्यास करदे होणगे शायद उन्हां दे कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद गुरु घर विच अभ्यास खड़ा है जप ते जाप ते। दसम ग्रंथ की पहली बाणी है जाप, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। जप बाणी का नाम है, तो जप शुरू होंदा है आद सच जुगाद सच। उपर जिहड़ा एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है ना, ये मूल मंत्र है, ये मंगला चरण है, इसका जप जी साहब नाल कोई तल्लुक नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं कि जिथे किधरे नवा कोई राग शुरू होंदा, नवी बाणी शुरू होंदी, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंत्र मौजूद है, ये मंगलाचरण के रूप में मौजूद है। बाणिया के बकायदा नाम ने, गुरु ग्रंथ साहब के जितनिया बाणिया ने सब के नाम ने। किसी का नाम सुखमनी, किसी को संस्कृति श्लोक, किसी को चौबोले कहते हैं, किसी को गाथा कहते हैं, किसी को फोने छंद कहते हैं। कोई श्लोक वारा तो वधीक की बाणी है, कोई वारा ने वक् वक्। इस तरीके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी पहली बाणी है वो है जप। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांतिक जिहड़ा नुकता है वह है जप, वह है जाप। जप का मतलब है किसी एक अक्षर नूं बार बार दोहराना, चलाई जाना, चलाई जाना। हुण जप किवें करना है, जप किसदा करना है, जप किस वक्त करना है, जप कौन कर सकता है, सारी व्याख्या जप जी साहब चलती है। किसदा जप करना है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एदा जप करना। यह श्लोक है। जप किवें करिए, जप कौन कर सकता है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है जप जी साहब के अंदर। और मनुख नूं पहुंचाने की कोशिश की थी गुरु नानक ने सच खंड तक। परमात्मा की है सच, लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, जिथे तुसी बैठे हो इसनों कहने ने सत संग, उन्ना बंदियां दा इकट्ठ जो सच दी संगत करन आए ने, सत दी संगत करन आए ने। सत कौन है, परमात्मा। सत कौन है, अकाल पुरख। सत कौन है, ईश्वर। उदी संगत करन आया, दिन भर काम धंधिया की संगत की, धियां पुत्रां की संगत की, धन संपदा की संगत की, यारां दोस्तां की संगत की, हो सकता विकारां की संगत की, पर एक घंटा अद्धा घंटा सत की संगत कर ले। खुश किस्मत है वह मनुख जिहदा सत दे नाल संग हो जाए, ते जिहदा सत दे नाल संग हो जाता है, असी पता उसनू की कहने सत संगी, ये ते सत संगी, इहदा सत नाल संग हो गए। पहचान की होगी सत संगी दी, उहदा वेखना सच होगा, उहदा बोलना सच होगा, उहदा सुनना सच होगा, उहदा सोचना सच होगा, रोम रोम विचों सच निकलेगा। सत संगी, सच नाल संगत होगी, सत नाल संग बन गए। सच एक परम शक्ति है, सच एक परम नूर है, सच एक परम आनंद है, सच एक परम मस्ती है, सच एक परम खेड़ा है। मनुख दे कोल ये खेड़ा दिखाई नहीं देता, मनुख दे कोल ये मस्ती दिखाई नहीं देती, मनुख दे कोल ये आनंद ते प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस वास्ते गुरुद्वारे विच बैठा होया भी मनुख कई दफा गुस्ताखी माफ, झूठ संगी ते हुंदा है, सत संगी नहीं। गुरुद्वारे आ जाना होर गल है, सतसंगी हो जाना होर गल है, वरना गुरुद्वारे बैठे हुए भी कई झूठ संगी आते हैं, सतसंगी नहीं। सतसंगी होना कोई मामूली गल ना समझना, बच्चियां दी खेल ना समझना, सतसंगी होना, सत नाल संग स्थापन कर लेना, सत नाल रिश्ता जोड़ लेना, सत दे नाल संबंध जोड़ लेना, सत नू अपना संबंधी बना लेना, बहुत वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। सत नाल संबंध जुड़ सके, सत नाल रिश्ता जुड़ सके, उस वास्ते जो तौर तरीका गुरमत ने दसिया, जप जाप। ते तुसी आखोगे जप किवें करना है, मैं जिहड़ी गल थोड़े सामने रखांगा उह ना मेरा निजी ख्याल है ते ना ही मेरा निजी अनुभव है। गुरबाणी नूं पढ़िया है, व्याकरण दृष्टि अनुसार जो अर्थ बोधा का थोड़ा जिहा पता चलिया है वह मैं थोड़े सामने रखता पिया, जिहड़ी गल आखांगा उसकी गुरबाणी तशरीह कर देगी, कि फिर मनना न मनना वो थोड़े फैसले पे है, सुनाना मेरा फर्ज और सुना के मनना मेरा फर्ज, सुन के मनना थोड़ा फर्ज। जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा, साहब कहने असी सदके जाते हैं उन्हां तो कुरबान जाते हैं जिन्हां ने सुन के मन ले। पहले सुनना है, इतनी मैरज करना, मनना बाद च, पहले सुनना है। चार पौड़ियां सुनिए दियां पहले ने, जिन्हों सुनिया ही नहीं उन्हों मनना की, पहले तो सुनना है तां पता चलेगा। तो जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा, जिन्हें सुन के मन लिया, तो जब मन लिया तो उन्हें की करना है, संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़े किस तरह जोड़ेगा, जप नाल, जाप नाल। जाप का की तरीका है, साढ़े देश में जिहड़े अभ्यासी मनुख ने वह इस ढंग के दावे करते हैं भी एक जल्दी हुई दीवे की लो सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, जाप करो। कोई कहिंदा ध्यान इत्थे जोड़ो, सनातन मत ते साढ़े देश दे कुछ गुरमतीए अखवाण वाले भी ऐसा कहिंदे ने कि गुरु नानक की तस्वीर सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, इत्थे आकार हो गए, तस्वीर ते आकार है, वजूद है, ते साहिब कहिंदे निराकार उहदा कोई वजूद ही नहीं, उहदी कोई तस्वीर नहीं, उहदा कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे तस्वीर दे ची ध्यान जोड़ना है तो यह मर्यादा हिंदुस्तान दे पहले भी मौजूद सी, सनातन मत की गुरु नानक नूं मान दी की लोड़ सी। सतगुरुदेव जी महाराज ने जो नारा लाया निराकार, कोई आकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई शक्ल नहीं, चक्र चेन अर बरम जात अर पात नहिं जे, साफ कह दिता वह मनुख की मूर्ति भी नहीं है। सोकम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साधकर हारे क्यों न देखन पाए, वह मनुख भी नहीं है, वह नर ते नारी भी नहीं है।
क्योंकि मनुख मन लीए तो फिर मनना पेगा उदा जन्म भी होया है, मनुख मन लीए तो यह भी मनना पेगा उदे मां बाप भी है, मनुख मन लीए तो मनना पेगा उदी मौत भी होगी, क्योंकि जिहड़ा जमे है वह मरेगा, फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, वो भी कदर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के वो ध्यान जोड़ना, मैं समझदा ये परमात्मा की गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है, निराकार नहीं निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द धुन आवाज। तमाम अभ्यासी मनुख अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया तो उन्होंने यह किया है कि परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक धुन है, अनाहद नाद है। हुण गुरबाणी कोल तुसी पुछो भी जे असी नाम जपीए ते की होवेगा, साहिब कहिंदे दो गल्लां होणगीआं। नाम जपे जपण वाले मनुख दे अंदर, नाम अभ्यासी मनुख दे अंदर दो घटनावां घटणगीआं। केहड़ियां केहड़ियां? नाम जपत कोट सूर उजारा दिन से भरम अंधेरा। एक तो उसके अंदर प्रकाश होगा चानना, दूसरा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। वो अंदर एक अनहद बाजा वजे, अनहद बाणी नाद वजाया, सुन समाद अनहद पै नाद कहन न जाए अचर्ज दसमा। साहब कहन अनहद नाद वज पैंदा, एक ऐसा नाद जिसनु प्रगट करन वास्ते कोई रंग रूप ते नहीं, अंदर वज पैंदा। इस वास्ते भारत के प्राचीन कुछ ऋषि मुनिया ने कह दिता, परमात्मा शब्द है, धुन है, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, चानना है। और आप सुन के हैरान होवोगे, एक विचार नाल जगत दे तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने, एकाग्रता बख्शे। संसार की उत्पत्ति किवें होई है? मुहम्मद साहब का कहना है कि खुदा तो एक कुन नाम की धुन होई ते जगत बन गया। एकाग्रता बख्शे, कुन एक धुन होई जगत बन गया, लोगोस नाम की एक धुन होई संसार बन गया। ऐसा बाइबल का संदेश है। ओंकार की धुन होई ते संसार बन गया, ऐसा स्वामी महावीर कहते हैं। जिहड़ा ओंकार शब्द है बड़ा पुराना है, इनू जैनिया ने अपनाया है, इनू सनातनिया ने भी अपनाया है। और इतिहास की पड़चोल करिए तो ओंकार शब्द बहुत पुराना नहीं, ते घट तो घट 4000 साल से पुराना है, ये सबूत मौजूद है। हिंदुस्तान में नर्मदा के कंडे देते एक तीर्थ मौजूद है बहुत वड्डा, उस तीर्थ का नाम है ओंकार जी। जिहड़ा मंदिर बनया है वो पहाड़ नूं तराश के बनाया गया है, पत्थरां पहाड़ ते, ते उस मंदिर का नाम है ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम भी ओंकार जी है। और हर पूर्णमाशी नूं हिंदू जगत उत्थे पहुंचता है तीर्थ यात्रा वास्ते। शिवरात्रि वाले दिन गालबन कोई 15-20 लख मनुख पहुंच जाते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अस्थान भी इस तीर्थ देते है। और इस तीर्थ देते गुरु नानक ने एक बाणी उच्चारण की थी, केड़ी? दक्कनी ओंकार, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सी, दक्कनी ओंकार। यह तीर्थ दक्षिण देश है हिंदुस्तान के, ते दूसरा रामकली दक्कनी। जिन्होंने कभी थोड़ी जी संगीत की पड़चोल की थी है ना, तो हिंदुस्तान के दो तरह का संगीत बड़ा प्रचलित है, पूर्वी संगीत ते दक्षिण। बड़ी गल है ना, पूर्व का संगीत ते दक्षिण का संगीत। लिखिया हुंदा साहब गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, गौड़ी गाओ पर पूर्व की गौड़ी, दक्षिण की गौड़ी नहीं। दक्षिण में गौड़ी और गाई जाती। रामकली दक्षिणी महला पहला, भई ये रामकली दक्षिण की रामकली, पूर्व की रामकली नहीं, दक्षिण की रामकली। गौड़ी गावनी है दक्षिण की नहीं, पूर्व की गौड़ी। बड़ा ख्याल रखे मेरे पातशाह ने। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ। ਤੋ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਪਾਲੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ, ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਜਿਸ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਓਅੰਕਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਭਾਂਵੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਓਮ ਤੇ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੁੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਗੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਐਸਾ ਈਸਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਧਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਅਸਥੂਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਨੰਤ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਦ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਭੈ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾਜਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਸਨ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਆਪੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ। दिल अपने आप धड़क रहा है, असी नहीं धड़का रहे। नबज अपने आप चल रही है, असी नहीं चला रहे। श्वास अपने आप चल रहे हैं, असी नहीं चला रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं कह रहा, शब्द अपने आप चल रहे हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। कलगीधर पातशाह कहते मेरे सिख की सुरत इतनी उच्ची चली जावे कि जाप सो अजप्पा जापे। रसना नाल जाप ना करे फिर भी जाप जारी है, इतना उच्चा जाए मेरा सिख, अनादनाद उसके अंदर प्रगट हो जाए। अनादनाद तो दो गल्लां प्रगट होणगियां पहुंचे हुए मनुख के अंदर, एक तो उसके अंदर प्रकाश होगा, एक उसके अंदर अनादनाद वजेगा। ये दो गल्लां, ये दो गल्लां की पहचान है। धर्मी दिस पैना एक शिंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना। इतनी मैं अर्ज कर रही, शिंगार करके कोई भी धर्मी दिस सकता है, पर साधना करके धर्मी हो जाना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। बच्चियां भी खेल नहीं, इतनी मेहनत कर दे। ते लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, 4 अरब की आबादी दे विच जमीन दे उत्ते मनुखां दी अज 4 अरब के करीब आबादी है। तुसी दो हत्थां दी उंगलियां ते उन्हां मनुखां नूं गिण सकदे हो जिन्हां दे अंदर नूर प्रगट होया है, जिन्हां दे अंदर अनहद नाद प्रगट होया। बाकी ते गल नहीं है, सिर्फ विचार ही ने, मनुख की पहुंच नहीं। कारण मनुख साधना नहीं कर रहा। तुसी आखोगे फिर साधना की है, गुरु घर में जप ते जाप किवें करिए। तो गुरु नानक की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरुमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान, वाहगुरु वाहगुरु की धुन अलापनी, धुन में ध्यान जोड़ना बड़ी औखी गल है, करके देखोगे बड़ी औखी गल है। यह जी कथा है ना, एक घंटा दो घंटा मैं कर सकता, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कीर्तन कोई 4 घंटे भी कर सकता, सारी रात भी कर सकता, कोई वड्डी गल नहीं। इन मैं कोई बहुत वड्डी गल नहीं मानता। डीवटी है अखंड पाठ की, 8-8 घंटे भी कई कर लेंगे। मैं हिंदुस्तान देखे एक पाठी 4-4 ड्यूटियां भी दे देता, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। इत्थे तुसी 2-3 घंटे बैठ सकते हो, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। पर वाहगुरु वाहगुरु की कोई धुन अलापे, उहदे च ध्यान जोड़े, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट आ जिहड़ी गल मैं कह रहा दावे नाल कह रहा, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट ते शायद मैं 1 मिनट ज्यादा कह रहा, 1/2 मिनट भी नहीं कर सकोगे, करके देखना नहीं। साहब कहते अगर कोई 1 सैकंड वास्ते भी कर ले, 1 सैकंड वास्ते गल बन जाएगी। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। निमक कहते 1 सैकंड, 1 सैकंड दे तू जाप करते गल बन जाएगी। 1 सैकंड ते तुसी आखोगे 1 सैकंड किधरे अत कथनी ते नहीं। क्षमा करनी, 7 बचन वह होंगे ने जो वधा के नहीं बयान किए जाते, घटा के नहीं बयान किए जाते, उन्होंने कहते हैं 7 बचन। जिड़ी गल वधा के बयान की जाए उन्होंने कहते हैं अति उपमा अलंकार, वधा के बयान कर दी गई है। तो जिड़ी गल घटा के बयान कर दी जाए वह निंदा है। जिहड़े सतपुरुष ने इन्ना वधा के गल कर दे, ना घटा के गल कर दे, जितनी गल है उतनी बयान कर दे। इस वास्ते 7 पुरशां के बचन 7 बचन आते, ना वधा के गल आखे। कवि लोग कई दफा गल वधा के कह देंगे, घटा के भी कह देंगे, पर 7 पुरखां के जोड़े बचन आते हैं वो कल्पना के उत्ते नहीं खड़े, सच्चाई के उत्ते खड़े हैं। गल वधा के नहीं कहते, गल घटा के नहीं कहते, गल जितनी है उतनी कहने, 1 छिन देच गल बन जाएगी। पर हूँ 1 छिन केड़ा कि वाहगुरु वाहगुरु की बंदा धुन अलापे, ध्यान जोड़े। हुण तुसीं करके वेखना, ध्यान कदी सज्जे जांदा कदी खब्बे जुड़दा ही नहीं। कारण की है, गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान है कि बार जाण नूं परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे सानूं दित्ते ने, जिहड़े 9 इंद्रिय ने ना 9 दरवाजे, ते अंदर असीं जा सकीए, अनहद नाद सुन सकीए, प्रकाश वेख सकीए। इक्को ही दरवाजा है, उस दरवाजे नूं आख्या गया है 10वां दरवाजा, दसम द्वार करके गुरमत विच कहा गया, दसम द्वार। द्वार कहने दरवाजे, और इसका बड़ा गुरबाणी च जिक्र है, 9 दरवाज़ नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। भई जिहड़े 9 दरवाजे ने रस इत्थे भी है पर बड़ा फिक्का। अखां दा रस, जबान दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस, मनुख नूं रस चाहिदा है। जिथे रस नहीं मिलेगा बंदे नूं नींद आ जाएगी, सौं जाएगा बंदा, बोर हो जाएगा, उठ जाएगा, परेशान बेचैन हो जाएगा, कोई रस चाहिदा। इन्हां नौ दरवाजियां विचों किसी ना किसी दरवाजे का रस चाहिदा है बंदे, अगर नहीं बंदा नहीं बैठ सकेगा उस महफिल विच जिथे रस नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा ये जिहड़ी गुरबाणी है इन्हां नौ दरवाजियां का रस है ही नहीं है। तुसीं जबान नाल चख के नहीं कह सकते गुरबाणी खट्टी है, मिठी है, सलूनी है, नमकीन है, किहो जिहां दी है, नहीं, ये जबान का रस नहीं है, ये अखां का रस भी नहीं, भी तुसीं वेख लो, ये कन्नां का रस भी नहीं है, ये खलड़ी का रस भी नहीं, ये नासका का रस भी नहीं, ये इन्हां नौ दरवाजियां का रस नहीं है, ये दसवें द्वार का रस है। नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चूज है, अमृतमई रस दसवें द्वार है, इन्हां नौ दरवाजियां ते नहीं। ते हुण भगत कबीर कहिंदे ने नौ घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप न पाई, कहो कबीर नवे घर मूसे दसवें तत समाई। ये जिहड़ी कामण, ये जो जीव आत्मा है, ये जो मनुख का ध्यान है, मनुख की चेतना है, ये नौ दरवाजे च भटक के रह जाते, और ये नौ दरवाजे एक भूल भुलैया ने दिल्ली ते लखनऊ दे च भूल भुलैया बनी हुई है, उन्हों कहिंदे ने भूल भुलैया। एक दफा बंदा अंदर चला जाए, इंटर हो जाए, फिर बाहर निकलना होगा, जिन्ने चिर तक कोई गाइड ना आवे नहीं निकल सकेगा, बंदा फस जाता है, इधरों निकलना इधरों निकलना, जिन्ना वह निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर फस जाता, निकलता ही। फिर जिहड़े उत्थे दे रहण वाले मुंतजिम ने उन्होंने इंतजाम कर रखे कि जिहड़ा बंदा बिल्कुल ही ना निकल सके उन्हें फिर कढ़ो, क्योंकि अंदर मत्था मारदियां मारदियां थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो कबीर कहिंदे ने जिहड़े नौ दरवाजे ने ना, ये तो भूल भुलैया ने, बंदा इन्हां च ही भटक के रह जाता सारी जिंदगी। अखां दा रस माण रहा है, उगता गया, जबान दा रस हुण माणदा पिया, जबान दे रस तो उगताया है, कन्नां दे रस ते चला गया, कन्नां दे रस तो बेचैन होया, हुण खलड़ी दा रस चाहीदा स्पर्शता दा, ते खलड़ी दे रस तो बेचैन होया, नासका दा रस चाहीदा, नासका दे रस तो औख होया, फिर अखां दा रस चाहीदा, फिर कन्नां दा रस चाहीदा, इसे च भुलिया रहिंदा। बुलावड़े भुली भुल भुल पछो नाल, मुड़ मुड़ के भुलदा है, बार बार भुलदा है। एक गलती साढ़े कोल एक दफा नहीं हुई, बार बार हुई है। कहिंदे जो एक गलती सिर्फ एक दफा करे वो मनुख है, जो एक गलती दोबारा करे मनुखता तो थल्ले है, पशु है। ते जो एक गलती नूं बार बार करी जाए इते शैतान है, कोरा शैतान, दैंत है। ते गुस्ताखी माफ संसार विच मनुख विरले ने, जो गलती करे ही ना उन्हों कहने देवता है, फरिश्ता है, भुल करता ही नहीं। भूल कीती है सिर्फ एक दफा, मनुख है, मनुख का सुभाव है भुलेगा, माटी का क्या धोखे स्वामी मानस की गति, मनुख भुलेगा। इंसान जोड़ा लफ्ज है ये अरबी का है, तो मैं ये अखरी अर्थ पढ़े ने अरबी शब्दकोश दे, ये अखरी अर्थ ने भुला कर वाला, गलतियां कर वाला, इंसान के अखरी अर्थ यही बनते और कुछ नहीं। पर एक गलती एक दफा होवे ये इंसानी सुभाव है, ये मनुखी फितरत है, क्योंकि मनुख सीखता ही गलतियां तो, मनुख सीखता ही भूलना तो है, कुछ नहीं सीख सकता, इतनी भी मैरिज कर लिया, सीधा ही जो सीख जाए बिना भूल कीतियां ही सीख जाए वो तो फरिश्ता है, वो तो देवता है। तो जो भूलों तो सीखे वो मनुख है, तो जो भूलों तो भी ना सीखे वो पशु है, तो भूलना करना ही जिस तरह सुभाव हो जाए तो शैतान है, वो तो दैत है, तो संसार वास्ते बड़ा खतरनाक होगा, अपने वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा, जगत वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा। तो भगत कबीर कहते हैं भुलावड़े भुले, बार बार बंदा इन्हों नौ इंद्रियां भटक रहा है, भुल रहा है, नौ घर देख जो भूली कामण, बस अनूप ना पाई, वो जी अनूपम वस्तु है इन्हों नौ दरवाजे से नहीं है, दसवें से है। अनूपम वस्तु परम वस्तु की, एक नूर, एक अनाहद नाद, ऐसा नाद जिन्हों सुनदिया ही बंदा बिस्माद हो जाए, ऐसा नूर जिन्हों वेखदिया ही तबक रोशन हो जाए सारे, वो एक प्रकाश है ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚੁਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰੇ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨੌ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਕਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਲੜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਸਵਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਪਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦੋਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕੌਣ? ਰਾਗੀ ਵਾਜੇ ਨਾਗ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਈਆਂ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁੰਨ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਗਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਨ ਚੱਲਦੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ, ਹੂੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਸ ਬਾਂਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਰ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਂਸੁਰੀ, ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਮੜੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ ਜਿਨ ਸਾਵਨ ਗਨ ਹਰ ਗਾਜੇ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਢੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ। ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ। ਸੁਰਸਤੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਿਰਫ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਮਰਦਾਨੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭੈਰਵੀ ਪੈ ਗਾਂਦਨ, ਕਦੀ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਪੈ ਗਾਂਦਨ, ਕਦੀ ਆਸਾ ਪੈ ਗਾਂਦਨ, ਕਦੀ ਸੋਰਠ ਪੈ ਗਾਂਦਨ, ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜੈਤ ਸੀ ਪੈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ, ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਸੋ ਕਈਆਂ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗ, ਬੇਅੰਤ ਰਾਗ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਗ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣੇ। ਵਰਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਡਮਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, एक तारे नूं जन्म दिता नारद ने, मरदंग नूं जन्म दिता दक्षिणी भारत के संतां ने, और कहिंदे ने रबाब की महिमा जिहड़ी हिंदुस्तान विच प्रचलित कीती गुरु नानक ने, सरंदे नूं जन्म दिता गुरु अर्जन देव जी ने, सत्ते ब्रह्मंडे ने कीर्तन करन तों इनकार कर दिता, ते साहिब आप सरंदा लैके बैठदे कीर्तन करन गुरु अर्जन देव जी। बिलावल राग की धुन पै अलापते ने। हुण पुछिए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, पातशाह ये बिलावल गावना तुसीं कित्थों सिखे है, किस कोल सिखे है, किहड़े राजी ने तुहानूं सिखाया, किहड़े संगीतकार कोल सिखे है? नहीं, संगीत अंदरों पिया फुटता है, राग अंदरों पिया फुटता है, वक्त का राग गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पे अलापते हैं। बाबा दीप सिंह शहीद जिथे सवा मन के बस्तर तन देते सजा के रखते सन, उत्थे नाल सरंदा भी रखते सन। मैदान जंग च लड़दियां लड़दियां जिथे अमृत वेला हो जाए, शस्त्रां नूं एक पासे रख के सरंदे की सुर दे विच अपनी आत्मा की सुर जोड़ते सन, रब नाल जुड़ जाते सन। दरअसल रब नाल जिहड़ा बंदा जुड़ेगा उहदे अंदरों संगीत जरूर प्रगट होवेगा। साडे देश का महाकवि हिंदी ते बंगला का टैगोर कहा करता सी, जिहनूं फुल नहीं चंगे लगते, जिहनूं संगीत नहीं चंगा लगता, जिहनूं कविता नहीं चंगी लगती, जिहनूं मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, उस बंदे का जिंदा रहना संसार वास्ते नुकसानदायक होगा, हानिकारक होगा, क्योंकि बंदा पत्थर होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये कठोर होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये दैंत होगा, इनू कविता नहीं चंगी लगती, इनू संगीत नहीं चंगा लगता, इनू फुल नहीं चंगे लगते, इनू मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते। स्पष्ट गल हो गई कि इसका हिरदा बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, बड़ा कठोर है। रब नाल जुड़े हुए मनुख का हिरदा कोमल हो जाता है। तो मैं अर्ज करा ये जो संगीत है ये सत पुरशा की देन है, महापुरशा की देन है, उन्होंने जगत में प्रगट किया। बारहों फिर महापुरशा की नकल चल पी, फिर साधना की गई। तो अनहद नाद तक पहुंचने वास्ते नाद का आसरा लैण, वाहेगुरु वाहेगुरु की धुन अलापनी है, ये ध्यान जोड़ना है। कथा क्यों सुननी है, कीर्तन क्यों सुनना है, गुरुद्वारे क्यों आना है, असी जाप कर सके इतनी मेहनत कर दे। गुरु सतगुर का जो सिख आखा है सो भल के उठ हर नाम है, ये जोड़ा नितनेम करना है, बाकी कुछ करना है तो बाद करना है, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बाद, पहले जाप, पहले नाम का चिंतन। सिख जगत विच ये नहीं रहा, इस वास्ते अभ्यासी पैदा होने बंद हो गए, हुण ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कोई नहीं। अज तो 40-50 साल पिछे जाइए, बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन साडे विच, बहुत अच्छे, बाबा निधान सिंह सी, बाबा अतर सिंह मस्तुआने वाले हैगे सन, बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले हैगे सन, और अकाली कौर सिंह जी कश्मीर वाले हैगे सन, संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू वाले हैगे सन, बाबा करम सिंह होती मरदान वाले हैगे सन। अज तुसी चिराग लेके ढूंढण वास्ते जाओ, ब्रह्म ज्ञानी दे कोई दर्शन नहीं, किधरे भी नहीं। मैं थोनू मायूस नहीं करता, निराश नहीं करता, हो सकता मेरी खोज गलत होवे, पर मैं भटक भटक के देखे अभ्यासी कोई नहीं, कारण अभ्यास ही नहीं रहा, जाप ही नहीं रहा। हर घर विच इक रसोई ते बनी हुई है ना, किचन बने हुआ हर घर दे जिथे असी भोजन बनाते हैं, हर घर विच 4-5 फुट 3 फुट थां ऐसी भी होनी चाहिए जिथे बैठ के बंदा जाप कर सके, चाहिए वह भी एक रसोई है, उत्थे आत्मा का भोजन बनाना है, शरीर का भोजन बन रहा है जिस किचन विच, एक ऐसा किचन भी चाहिए है, एक ऐसी रसोई भी चाहिए है जिथे रूह की खुराक बनाई जा सके, आत्मा की खुराक बनाई जा सके, उत्थे बैठ के वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप हो, और रोज अगर उत्थे जाप होवे वो जगह इतनी पवित्र हो जाएगी, वो जगह इतनी महान हो जाएगी, उत्थों की वाइब्रेशन ऐसी सोहनी बनेगी, अगर ठग ते शैतान भी उत्थे आके बैठे उसकी रसना तो वाहेगुरु निकल जाएगा, लाजमी निकलेगा, उस जगह का असर होगा। इन्हों कहते ना अस्थान भेद, जगह का असर। हुण ये जाप नहीं, तो ये जाप ना हो सब कुछ तुसी करी जाओ, क्षमा करनी, ये कोई बहुता लाभकारी नहीं होता। ये उत्ते एक मैं दलील देना होना, शायद थोड़े वास्ते काबले कबूल हो गए। एक किसान ने, जमींदार ने जमीन विच हल चलाया, खाद भी पाई, पानी भी दिता, जमीन विच वत्तर भी सी, चारों पासे वाड़ भी बना ली, रखवाली करन वास्ते बैठ भी गया। 15-20 दिन लंघ गए, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਹੈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਮੈਂ ਪਾਈਏ। ਸਵਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਾ ਵੀ ਫੇਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ, ਸਵਾਗਾ ਫੇਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਬੀਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਟਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੋਵਿਆਂ ਕੋਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ, ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਵੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਹੇ ਕੋ ਮਨ ਮੇ ਜਹੇ ਕੋ ਅਮਤੋਜ ਸਵੇ ਜਗ ਜਾਇ, ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਧੁਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਾਪਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਨੌ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਕੀ? ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਮ। ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਮ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਮ। ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਧਰੇ 2 ਫੁੱਟ ਖੋਤੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਧਰੇ 4 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਧਰੇ 8 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਧਰੇ 100 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ 400 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ 4 ਫੁੱਟ ਖੁਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। 8 ਫੁੱਟ ਖੋਦੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ 400 ਫੁੱਟ ਖੋਦੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ 200 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੌ ਨਿਤਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਬਹੁਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਹਟਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, 3ਰੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾ, ਤੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਤੇ 9 ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਕੁਝ ਯੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਉਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, 10ਵਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ। ਹੁਣ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਖਲੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾਸਕਾ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘਦੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਚੇਤਪਣੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚੇਤਪਣੇ 'ਚ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਿਆ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਗ ਮਗ ਜੋ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਗਾਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਨੌਬਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਥਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਆਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੋੜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੋਲਣਾ ਕੀ, ਤੋੜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ, ਦਿਖਾ ਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਰ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ, ਵਾਮਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ, ਰਾਗ ਪਰੀਸੋਂ ਕਈਆਂ ਕੇਤੇ, ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ। ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਨੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਧੁਨ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਉਂ ਧੁਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ 5 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਵਾਕ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਖਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੌਕੇ ਪੈ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ।